मैंने कब? वो कहते कहते रुक गई। वो फिगर तुम इसलिए लिखवा रहे थे, उसे याद आ गया। हाँ, उसकी बेपरवाही अब भी बरकरार थी। तुम पागल हो? इमामा को बेख्तियार हंसी आई। शायद, सालार ने बेसाख्ता कहा। अच्छा, मैं 1 अरब लिख देती तो क्या करते? वो अब तंज कर रही थी। तो 1 अरब भी दे देता। क्या फयाजी थी, कहां से देते? फ्रॉड करते। वो बेसाख्ता नाराज हुई। क्यों करता? कमा कर देता। सालार ने उसकी बात का बुरा माना। सारी उम्र कमाते ही रहते फिर। अच्छा होता सारी उम्र तुम्हारा कर्जदार रहता, वाकई अच्छा होता। तो 1 अरब चाहिए क्या? वो तीखी मुस्कुराहट के साथ कह रहा था। इमामा को कई साल पहले वाले सालार की झलक नजर आई। क्यों दे रहे हो? उसने संजीदगी से कुछ देर उसे देखकर कहा। बीवी हो तुम, इसलिए। इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? इमामा, मेरी सेविंग्स हैं ये, सालार ने बेहद तहम्मुल से कहा। सेविंग्स हैं तो मुझे क्यों दे रहे हो? वो कुछ खफा हुई। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें दूं। अगर ये दुनिया मेरी होती तो मैं ये सारी दुनिया तुम्हें दे देता। मैं कमा रहा हूं और रुपये आ जाएगा मेरे पास, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या शाहाना अंदाज था, लेकिन इतनी ज्यादा रकम? सालार ने उसकी बात काटी। मैं इतनी ज्यादा रकम नहीं देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मर्जी का हक मेहर देना चाहता था, इसलिए तुमसे एक फिगर लिखने को कहा। तुम्हें पता है जो फिगर तुमने लिखी थी उस दिन मेरे अकाउंट में एग्जैक्ट उतनी ही अमाउंट थी। वो अब रकम दोहराते हुए हंस रहा था। अब इसको तुम क्या कहोगी, इत्तेफाक? मुझे इत्तेफाक नहीं लगा, मुझे लगा वो रकम मेरे पास तुम्हारी अमानत थी या हक था, इसलिए तुम्हें दे रहा हूं। 30 लाख दिया है, कुछ रकम का उधार कर लिया है तुमसे, वरना अगले 2-3 माह इधर उधर से मांग रहा होता। इसलिए तुम आराम से रखो ये पैसे, मुझे अगर कभी जरूरत हुई तो तुमसे मांग लूंगा। अब मैं थोड़ा सा काम कर लूं। इमामा ने कुछ नहीं कहा था। वो दरवाजा बंद करके बाहर निकल आई। डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठकर वो एक बार फिर उस पे स्लिप को देखने लगी। वो इस शख्स को कभी नहीं समझ सकती थी, कभी नहीं। वो लाउबाली नहीं था, कम अज कम इतने दिन में उसे यह एहसास नहीं हुआ था, लेकिन वो समझदार भी नहीं था। कम अज कम वो पे स्लिप उसे यही बता रही। वो अगर उसे खुश करना चाहता था तो वो नहीं हुई थी, एहसान मंद देखना चाहता था तो हाँ। उसके कंधे झुकने लगे थे। ऐसी चाह उसने जिंदगी में किसी और शख्स से चाही थी, ऐसी नवाजिशात की तलब उसे कहीं और से थी। उसके वजूद को गीली लकड़ी वो पैसा नहीं बना रहा था, बल्कि वो फयाजी बना रही थी जो वो दिखा रहा था। वो उससे बराबरी चाह रही थी, बराबर नहीं हो पा रही थी। उस शख्स का कद लंबा नहीं हो रहा था, बल्कि उसका अपना ही वजूद सुकड़ने लगा था। इमामा, हम कल सुबह की बजाय आज शाम को जा रहे हैं, रात कराची में रुकेंगे और फिर कल रात को ही वापस आ जाएंगे। 7 बजे की फ्लाइट है, मैं शाम 5:30 बजे तुम्हें पिक करूंगा, तुम पैकिंग कर लो। उसने 12 बजे के करीब फोन करके ऑफिस से कराची का नया प्रोग्राम बताया था। वो एकदम नर्वस होने लगी। इतनी जल्दी पैकिंग? ठीक है, वो एक रात के लिए जा रहे थे, फिर भी। वो अब उसे अपने उन कपड़ों के बारे में बता रहा था जो वो साथ लेकर जाना चाहता था। वो पैकिंग करते हुए बेहद बोलाई हुई थी। वो 5:30 बजे वहां मौजूद था। वो जानती थी कि उसने गाड़ी में रोजा इफ्तार कर लिया होगा, लेकिन फिर भी वो एक बॉक्स में उसके लिए खाने की चंद चीजें और जूस लेकर आई थी। एयरपोर्ट तक की ड्राइव में वो दोनों बातें करते हुए साथ वो चीजें भी खाते रहे। वो 6:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचे। बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी। वो फर्स्ट क्लास से सफर कर रहे थे, इसीलिए ट्रैफिक की वजह से कुछ लेट होने के बावजूद सालार मुतमइन था। एग्जीक्यूटिव लाउंज से जहाज में सवार होते हुए सालार की फर्स्ट क्लास के कुछ और पैसेंजर्स से सलाम दुआ हुई। चंद एक से उसने इमामा का भी तारुफ करवाया। वो सब कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक रखते थे या फिर सालार के कस्टमर्स थे। कराची एयरपोर्ट पर होटल की गाड़ी ने उन्हें पिक किया था। मैंने सोचा था कि हम अनीता के घर पर ठहरेंगे, इमामा ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। मैं कभी अनीता के घर नहीं ठहरा, मैं होटल में रहता हूं, सालार ने उसे बताया। कराची अक्सर आता जाता हूं मैं, वो खिड़की से बाहर देखते हुए उससे कह रहा था। बाज दफा तो यहां आकर अनीता से बात तक नहीं हो पाती। इमामा ने उसका चेहरा देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। وہ مسلسل سیل پر کچھ میسجز کرنے میں مصروف تھا۔ وہ ساتھ ساتھ اسے سڑک کے دونوں طرف آنے والے علاقوں کے بارے میں بھی بتا رہا تھا۔ پھر مجھے تمہارے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، میری وجہ سے۔ سالار نے اس کے اچانک اس طرح کہنے پر اسے ٹوکا۔ تمہیں ساتھ لے کر آنا مجھے اچھا لگ رہا ہے، اور تمہیں انیتا کی فیملی سے ملوانے کے لیے یہاں لے کر تو آنا ہی تھا مجھے۔ امامہ نے اس کا چہرہ غور سے پڑھنے کی کوشش کی۔ سچ کہہ رہا ہوں، اس نے امامہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، تمہیں میرے ساتھ آنا اچھا نہیں لگا؟ سالار نے یکدم اس سے پوچھا۔ وہ مسکرا دی۔ آپ اپنی وائف کے ساتھ پہلی بار یہاں ٹھہر رہے ہیں۔ ہوٹل میں چیک ان کرتے ہوئے ریسیپشن پر موجود لڑکے نے مسکراتے ہوئے سالار سے کہا، اس فائیو سٹار ہوٹل کے چند کمرے مستقل طور پر سالار کے بینک نے بک کیے ہوئے تھے، اور ان کمروں میں باقاعدگی سے ٹھہرنے والوں میں سے ایک وہ بھی تھا، لیکن آج وہ پہلی بار اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ سالار نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور سائن کرنے لگا۔ وہ لڑکا اب امامہ سے کچھ جملوں کا تبادلہ کر رہا تھا، جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کے گرد موجود ساری سلاخیں گرا رہا ہو۔ وہ باہر کی اس دنیا سے مسحور ہو رہی تھی جس سے وہ سالار کی وجہ سے متعارف ہوئی تھی۔ بیچ لگژری پر انیتا اور اس کی فیملی نے ان کے لیے ڈنر ارینج کر رکھا تھا۔ وہ لوگ آدھے گھنٹے میں تیار ہونے کے بعد تقریباً 11:30 بجے وہاں پہنچے۔ انیتا اور اس کے شوہر کے علاوہ اس کے سسرال کے بھی کچھ لوگ وہاں موجود تھے۔ یہ سالار اور اس کی بیوی کے لیے ایک فیملی ڈنر تھا۔ اس کا استقبال بڑی گرم جوشی سے کیا گیا۔ اس کی گھبراہٹ ابتدائی چند منٹوں کے بعد ختم ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کافی لبرل فیملی تھی، اور ان دونوں کی شادی کے حوالے سے ہونے والی رسمی گفتگو کے بعد گفتگو کے موضوعات بدل گئے تھے۔ امامہ چیف گیسٹ تھی، لیکن وہاں کسی نے اسے ٹیلیسکوپ کے نیچے نہیں رکھا تھا، اور اس چیز نے امامہ کے اعتماد میں اضافہ کیا۔ کھانا ابھی سرو نہیں ہوا تھا۔ وہ ڈرنکس لیتے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے۔ امامہ گفتگو میں ایک مسکراتے ہوئے خاموش سامے کا رول ادا کر رہی تھی۔ اس کی زیادہ توجہ بیچ لگژری ویو کے گرد نظر آنے والے سمندر اور شہر کی روشنیوں پر تھی۔ وہ لوگ اوپن ایئر میں تھے۔ کراچی میں لاہور جیسی سردی نہیں تھی، لیکن یہاں اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ سالار نے آنے سے پہلے اسے گرم شال لینے کا نہ کہا ہوتا تو یقیناً اس وقت اس کے دانت بج رہے ہوتے۔ وہاں موجود تمام خواتین سویٹرز کے بجائے اسی طرح کی شالیں اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھی۔ سالار، میں وہاں آگے جا کر نیچے سمندر دیکھنا چاہتی ہوں، اس نے ساتھ بیٹھے ہوئے سالار کی طرف جھکتے ہوئے مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ تو جاؤ، سالار نے اطمینان سے کہا۔ میں کیسے جاؤں اس طرح اکیلے؟ تم ساتھ آؤ میرے، اس نے اس کے مشورے پر جذبذ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم خود جاؤ، دیکھو اور بھی لوگ کھڑے ہیں، تم بھی جا کر دیکھاؤ، سالار نے اس سے کہا۔ وہ اب اس کی گود میں پڑا بیگ اٹھا کر نیچے زمین پر رکھتے ہوئے بلند آواز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ امامہ نے کچھ چھجکتے ہوئے اس لمبی ٹیبل کے گرد موجود افراد پر نظر ڈالی۔ وہ سب گفتگو میں مصروف تھے، ان میں سے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ کچھ ہمت پاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی بائیں طرف بیٹھی انیتا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہاں سے جا کر دیکھو، وہاں سے زیادہ اچھا ویو ہے، انیتا نے اشارے سے اسے گائیڈ کیا۔ امامہ نے سر ہلایا۔ وہاں اس وقت ان کے علاوہ اور بھی کچھ فیملیز موجود تھیں، اور سالار ٹھیک کہہ رہا تھا، کوئی نہ کوئی وقتاً فوقتاً اٹھ کر اسی طرح اس عرشہ نما جگہ کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کو دیکھنے لگتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے نروس تھی، لیکن پھر وہ نارمل ہونا شروع ہو گئی۔ سالار وہیں بیٹھا کولڈ ڈرنک پیتے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ امامہ نے دو بار پلٹ کر کچھ نروس ہو کر اسے دیکھا تھا، وہ دونوں بار مسکرا دیا۔ یہ 9 سال پہلے کی وہ پور اعتماد لڑکی نہیں تھی جو آدھی رات کو اپنے گھر کی دیوار کود کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی، اس سے شادی کی تھی، پھر گھر سے چلی گئی تھی۔ وہ وسیم کی اس بہن کے بارے میں وسیم سے بہت کچھ سن چکا تھا، لیکن پچھلے 10 دنوں سے وہ جس لڑکی کو دیکھ رہا تھا یہ وہ لڑکی نہیں تھی۔ وقت نے جتنی توڑ پھوڑ اس کی زندگی میں پیدا کی تھی، اس سے زیادہ توڑ پھوڑ اس نے عرشے کی طرف جاتی ہوئی اس لڑکی کی زندگی میں پیدا کی تھی۔ اس کے انداز اتوار ہی تبدیل ہو گئے تھے۔ 9 سال اگر کسی شخص کو اس کے گھر والوں سے الگ کر دیا جائے، خوف اور دباؤ کے ساتھ चंद जगहों तक महदूद करके बाकी दुनिया से काट दिया जाए तो वो किस हद तक कंफ्यूज्ड, डबल माइंडेड, गैर महफूज और डिपेंडेंट हो सकता है। वो इसका अमली मुजाहरा इमामा की इस हालत में देख रहा था और ये चीज उसे तकलीफ पहुंचा रही थी। वो कम अज कम उसे इस हालत में नहीं देखना चाहता था। सालार, सालार, वो अनीता की आवाज पर बेख्तियार चौंका। उसने पूरी कुव्वत से उसके कंधे पर हाथ मारा था। या तो उसे वहां भेजते ना, अब भेज ही दिया है तो दो चार मिनटों के लिए किसी और चीज को भी देख लो। वो अब उसे डांट रही थी। वो मुस्कुराकर सीधा हो गया। उसका बहनोई गुफरान उससे कुछ पूछ रहा था। हवा इमामा के बालों को बिखेर रही थी। वो उन्हें बार बार कानों के पीछे करके संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें खुला छोड़कर आने पर पछता भी रही थी। इस तेज हवा में वो शिफॉन के दुपट्टे को सर पर टिकाने की कोशिश छोड़ चुकी थी। हाँ, वो पश्मीना शॉल उसकी महीन शिफॉन की कमीज को उड़ने से तो रोक नहीं पा रही थी, लेकिन उसके जिस्म को अच्छी तरह ढांपे रखने में मौसर थी। वो कई सालों में आज पहली बार किसी पब्लिक प्लेस पर सर ढांपे बगैर खड़ी थी। उसे बेहद अजीब लग रहा था। अगर वो सालार के साथ ना होती तो कभी भी ऐसी हालत में किसी खुली जगह पर खड़े होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। 10 दिन पहले तक तो वो घर से बाहर निकलते हुए अपना चेहरा भी छुपाती थी। वो वाहिद गेटअप था जिसमें वो खुद को बेहद महफूज समझती थी। सालार से शादी के बाद उसने चेहरा छुपाना छोड़ दिया था और अब उसके साथ खुद को महफूज समझती थी। तारीख समंदर में नजर आती रोशनियों के अक्स को देखते हुए उसने एक बार फिर गर्दन के गिर्द लिपटे दुपट्टे को सर पर लेने की कोशिश शुरू की। यहां उसकी कोशिश को नोटिस करने वाला कोई नहीं था। ये काम उस हवा में शॉल, दुपट्टे और खुले बालों के साथ आसान नहीं था। मैं बाल समेट दूं तुम्हारे? वो जैसे करंट खाकर पलटी, फिर जैसे इत्मीनान का सांस लिया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, उसने सालार को अपने अकब में देखकर बेख्तियार कहा। वो किस वक्त आया था उसे पता नहीं चला था। तुम मेरा दुपट्टा पकड़ोगे? उसने सालार की ओट में आते हुए अपना दुपट्टा उसे पकड़ा दिया। वो अब वहां खड़ी दूसरों को नजर नहीं आ रही थी। तुम्हें मुझको बताना चाहिए था कि यहां इतनी तेज हवा होगी, मैं बाल तो खुले छोड़कर ना आती। वो अपने बालों को ढीले जूड़े की शक्ल में लपेटते हुए उससे शिकायती अंदाज में कह रही थी। वो उसका चेहरा देखता रहा। वो अब अपनी शॉल उतार कर उसे देते हुए दुपट्टा उससे ले रही थी। ये कौन सा कलर है? वो दुपट्टे को अपने सर और गर्दन के गिर्द लपेटते हुए उसके सवाल पर ठटकी। क्रिमजन। क्यों? सालार ने शॉल उसके कंधों के गिर्द लपेटते हुए कहा। मैं तुम्हें बताना चाहता था, तुम इस कलर में बहुत अच्छी लगती हो। उसने उसके बाएं गाल को अपनी उंगलियों के पोरों से बहुत आहिस्ता से छुआ था। इमामा की आंखों में हैरत उमड़ आई। अगले लम्हे सालार को यह तय करना मुश्किल हो गया कि उसका लिबास ज्यादा करमजी था या उसका चेहरा। वो बेख्तियार गहरा सांस लेकर रह गया। अब तुम इतनी सी बात पर भी यूं ब्लश हुआ करोगी तो मामला जानलेवा हो जाएगा। मार दोगी तुम बड़ी जल्दी मुझे, वो खिलखिलाकर हंसी। वो तकरीबन 2:30 बजे वापस अपने होटल में आए थे। इमामा को इतनी नींद आ रही थी कि उसने ज्वेलरी उतार दी, चेहरा भी धो लिया, लेकिन कपड़े तब्दील किए बगैर सो गई थी। कराची से वापसी के बाद अगले 2 दिन इमामा बहुत अच्छे मूड में रही। उसे हर बात पर कराची याद आ जाता। उसकी ये खुशी सालार को हैरान करती रही। उसका ख्याल था उसे वो शहर पसंद आया है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं हुआ कि बात शहर की नहीं थी। वो अगर इमामा को नवाब शाह भी ले जाता तो भी वो इसी ट्रांस में वापस आती। वो खुली फिजा में सांस लेने के काबिल हो रही थी और एक लंबे अरसे के बाद, घुटी हुई सांसों के साथ जीने के बाद, कुछ देर तक तो इंसान ऐसे ही गहरे सांस लेता है जैसे वो ले रही थी। ख्वातीनों हजरात, तवज्जो फरमाइए, हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। इस वक्त यहां शाम के 7 बज रहे हैं और यहां का दर्जा हरारत जहाज के कैबिन अमला में से कोई इंग्लिश के बाद अब उर्दू में रस्मी अलविदाई कलिमात दोहरा रहा था। जहाज टैक्सी करते हुए टर्मिनल के सामने जा रहा था। बिजनेस क्लास की एक सीट पर बैठे सालार ने अपना सेलफोन ऑन करते हुए अपनी सेफ्टी बेल्ट खोली। इमामा खिड़की से बाहर देखते हुए गुमसुम थी। कहां गुम हो? उसने इमामा का कंधा थका। उसने चौंक कर उसे देखा और फिर अपनी सेफ्टी बेल्ट खोलने लगी। सालार अब लगेज कंपार्टमेंट से अपने बैग्स निकाल रहा था। एक फ्लाइट स्टेवर्ड ने उसकी मदद की। दोनों के दरमियान चंद खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। वो इस फ्लाइट पर आने वाले रेगुलर पैसेंजर्स में से एक था और फ्लाइट अमला उसे पहचानता था। जहाज की सीढ़ियों की तरफ जाने से पहले सालार ने मुड़कर उससे कहा, तुम्हें कोई कोट वगैरह लेकर आना चाहिए था, स्वेटर में सर्दी लगेगी तुम्हें। ये तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी शहर है। मैं पैदा हुई हूं यहां, 20 साल गुजारे हैं मैंने यहां, मुझे पता है कितनी सर्दी होती है। ये स्वेटर काफी है, इमामा ने बड़े जताने वाले अंदाज में उससे कहा। वो इस्तेहजाया अंदाज में मुस्कुराया। जहाज की सीढ़ियों से बाहर आते ही सर्द हवा के पहले झोंके ने ही उसे एहसास दिला दिया कि वो ठीक कह रहा था। उसे अपने दांत बचते हुए महसूस हुए। सालार ने कुछ कहे बगैर अपने बाजू पर पड़ी जैकेट उसकी तरफ बढ़ाई। उसने बड़ी फर्मा बरदारी से कुछ नादिम होकर जैकेट पहन ली। इस्लामाबाद बदल गया था, उसने खज्जिल होकर सोचा। अराइवल लाउंज की एग्जिट की तरफ बढ़ते हुए सालार चंद लम्हों के लिए ठटका। एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया इमामा, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। क्या बात है, वो मुस्कुराई। पापा को ये पता नहीं कि हम आज इस्लामाबाद आ रहे हैं। इमामा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। सालार ने उसे रुकते देखा तो वो भी रुक गया। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। सालार ने अपने कंधे पर उसके बैग की बेल्ट ठीक की। शायद टाइमिंग गलत हो गई, टैक्सी में बताना ज्यादा बेहतर था। और अब अगर उसने यहां से जाने से इनकार कर दिया तो वो दिल ही दिल में फिक्रमंद हुआ। वो पलकें झपके बगैर उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। वो भी इसी तरह देखता रहा। ये ढिटाई थी, लेकिन अब वो इसके अलावा कर भी क्या सकता था। उसने बिलाखिर इमामा की आंखों की बेयकीनी को गुस्से में बदलते देखा। फिर उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। वो मसलसल 2 हफ्तों से उसे सिकंदर उस्मान के इस्लामाबाद बुलाने का कह रहा था। ये सिकंदर उस्मान का बुलावा ना होता तो वो सिर्फ सालार के कहने पर तो कभी वहां ना जाती। और अब वो कह रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। सिकंदर उस्मान के ना बुलाने के बावजूद वहां जाने का क्या मतलब था, इसका अंदाजा वो कर सकती थी। और उस वक्त वो बुरी तरह परेशान हुई थी। एक लम्हे के लिए तो उसका दिल चाहा था कि वो लाउंज से बाहर निकलने से ही इनकार कर दे। उसे सालार पर शदीद गुस्सा आ रहा था। सॉरी, सालार ने इत्मीनान से कहा। वो चंद लम्हे मजीद उसे देखती रही, फिर उसने इर्द गिर्द देखा। फिर सालार ने उसे जैकेट उतारते हुए देखा। वो वहां खड़ी बेबसी के आलम में इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। सालार को अंदाजा था कि वो यही कर सकती है। उसने जैकेट उतार कर तकरीबन फेंकने वाले अंदाज में सालार को दी। थैंक यू, सालार ने जैकेट संभालते हुए कहा। टैक्सी में बैठने तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। वो पूरा रास्ता खिड़की से बाहर देखती रही। सालार ने भी उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की। इस वक्त गुस्से को ठंडा करने के लिए उसे मुखातिब ना करना मुनासिब था। वो अब घर पर सिकंदर उस्मान और तैयबा के रद्द अमल के बारे में सोच रहा था। अगली बिजली उन पर गिरने वाली थी। गाड़ी उनके घर की बाई रोड का मोड़ मुड़ रही थी। इमामा को अपना पूरा जिस्म सर्द होता हुआ महसूस हुआ। यह सर्दी नहीं थी, यह खौफ भी नहीं था, यह कुछ और था। वो 9 साल के बाद अपने घर को, उस सड़क को और उस मोड़ को देख रही थी। उसके होंठ कपकपाने लगे थे, आंखें भीगने लगी थी। सालार से सारी नाराजी, सारा गुस्सा जैसे धुआं बनकर हवा में तहलील हो रहा था। खुशी थी, क्या था जो वो गाड़ी को अपने घर की तरफ बढ़ते देखकर महसूस कर रही थी। उसके घर का गेट सालार के घर के गेट से कुछ फासले पर था और वो सिर्फ ये अंदाजा कर पाई थी कि गेट बंद था, घर की बैरूनी लाइट्स ऑन थी। गाड़ी के हॉर्न पर गार्ड ने बाहर देखा, फिर उसने गार्ड रूम से बाहर निकलकर गेट खोल दिया। सालार तब तक उसके साथ गाड़ी से निकलकर डिग्गी से बैग्स निकाल रहा था। इमामा ने इस बार अपना बैग खुद थामने पर इसरार नहीं किया था। गार्ड ने सामान लेने की कोशिश नहीं की। सालार अपना सामान खुद उठाने का आदी था, लेकिन उसने सालार के साथ आने वाली इस लड़की को बड़ी हैरत और दिलचस्पी से देखा था, जो गेट से घर के अंदर आने तक उन हमसाइयों के घर को दीवानावार देखती आ रही थी, जिनके साथ सिकंदर उस्मान का मेल मिलाप बंद था। धुंध के बावजूद इमामा ने घर की बालाई मंजिल के कुछ बेडरूम्स की खिड़कियों से आती रोशनी को देख लिया था। उसके अपने बेडरूम में भी रोशनी थी। अब वहां कोई और रहता होगा, वसीम या साद या उसका कोई भतीजा या भतीजी। उसने आंखों में उमड़ते सैलाब को साफ करते हुए उन खिड़कियों में जैसे किसी साए, किसी हेवले को ढूंढने की सई की। अंदर चलें, उसने अपने बाजू पर उसके हाथ की नर्म गिरफ्त महसूस की। इमामा ने आंखें रगड़ते हुए सर हिलाया और कदम आगे बढ़ा दिए। वो जानता था कि वो रो रही है, लेकिन उसने उसे रोने से रोका नहीं था। उसने बस उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया था। सिकंदर उस्मान उस वक्त लाउंज में फोन पर किसी दोस्त के साथ खुशगपियां करते हुए तैयबा का इंतजार कर रहे थे, जो अपने बेडरूम में कोई चीज लेने के लिए गई थी। अगर सिकंदर को ऑफिस से आने में देर ना हो गई होती तो वो दोनों इस वक्त किसी इफ्तार डिनर में जा चुके होते। लाउंज में सालार और इमामा का सामना सबसे पहले उन्हीं से हुआ था। किसी भूत को देखकर सिकंदर उस्मान का वो हाल ना होता जो इस वक्त उन दोनों को देखकर उनका हुआ था। वो फोन पर बात करना भूल गए थे। जब्बार, मैं बाद में फोन करता हूं तुम्हें, उन्होंने खड़े होते हुए अपने दोस्त से कहा और सेल बंद कर दिया। गुस्सा बेहद मामूली लफ्ज था जो उन्होंने इस वक्त सालार के लिए महसूस किया। वो लाहौर में उस उल्लू के पट्टे को ना सिर्फ इस्लामाबाद इमामा के साथ ना आने की ताकीद करके आए थे, बल्कि पिछले कई दिन से मसलसल फोन पर हर बार बात करने के दौरान ये बात दोहराना नहीं भूले, और वो हर बार फरमाबरदारी से ओके कहता रहा। ना ये फरमाबरदारी उनसे हजम हुई थी, ना इतना सीधा ओके। उनकी छठी हिस उसके बारे में सिग्नल दे रही थी। वो पिछले कई सालों में बहुत बदल गया था, बेहद फरमाबरदार हो गया था। उनके सामने सर झुकाए बैठा रहता था, बहुत कम उनकी किसी बात से इख्तलाफ करता या एतराज करता। लेकिन वो उनकी वो चौथी औलाद जिसके बारे में वो सोते में भी मोहतात रहते थे। सिर्फ सालार ही नहीं, बल्कि इमामा ने भी सिकंदर उस्मान के चेहरे के बदलते हुए तासुरात को दूर ही से भांप लिया था। डोंट वरी, पापा मुझे कुछ जलील करेंगे लेकिन तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। दूर से अपनी तरफ आते सिकंदर की तरफ जाते हुए वो खुद से चंद कदम पीछे चलती इमामा की तरफ देखे बगैर बेहद मध्यम आवाज में बड़बड़ाया था। इमामा ने सर उठाकर अपने शोहर का इत्मीनान देखा, फिर तकरीबन 10 मीटर के फासले पर आते अपने सुसर का अंदाज। फौरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आया कि उसे इस वक्त क्या करना चाहिए। वो ये सोचकर ज्यादा खौफजदा हुई थी कि सिकंदर उस्मान सालार की इंसल्ट करने वाले थे। अस्सलाम वालेकुम पापा, अपने हाथ में पकड़े बैग्स रखते हुए उसने पास आते हुए सिकंदर उस्मान से हमेशा की तरह यूं गले मिलने की कोशिश की थी जैसे वो उन्हीं की दावत और हिदायत पर वहां आया है। सिकंदर उस्मान ने खुशमगी नजरों से उसे देखते हुए उसका हाथ पीछे करते हुए कहा, तुम्हें मना किया था ना? जी, सालार ने बेहद फरमाबरदारी से इस सवाल का जवाब दिया। सिकंदर उस्मान का दिल चाहा कि वो उसका गला दबा दे, कैसे आए हो? चंद लम्हों के बाद उन्होंने उससे अगला सवाल किया। टैक्सी पर, जवाब खटाक से आया था। टैक्सी अंदर लाए थे? नहीं, गेट पर ही उतरे हैं, वो नजरें झुकाए बेहद सादत मंदी से कह रहा था। तो ससुराल वालों को भी सलाम कराते? वो इस बार चुप रहा, जानता था ना ये सवाल है ना मशवरा। बेटा, आप कैसी हैं? उसे कहर आलूद नजरों से घूरते हुए वो अब इमामा की तरफ बढ़ आए थे। उनका लहजा अब बदल गया था, वो बुरी तरह घबराई हुई बाप बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी, और सिकंदर को अपनी तरफ बढ़ते देखकर उसका रंग फक हो गया था। वो सिकंदर के सवाल का फौरी तौर पर जवाब नहीं दे सकी। सफर ठीक रहा? उन्होंने उसे अपने साथ लगाते हुए बेहद शफकत से पूछा था। और तबीयत ठीक है? चेहरा क्यों इतना सुर्ख हो रहा है? सिकंदर ने भी उसकी आंखों की नमी और परेशानी को महसूस किया था। जी वो अटकी, सर्दी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, मम्मी कैसी हैं आप? सालार ने बैग दोबारा खींचते हुए पहला जुमला सिकंदर से कहा और दूसरा दूर से आती हुई तैयबा को देखकर जैसे कर रही थी। सालार, क्या जरूरत थी यहां आने की? कुछ तो एहसास किया करो। वो अब उनसे गले मिल रहा था। कुछ नहीं होता मम्मी, उसने जवाबन कहा। तैयबा, इमामा को चाय के साथ कोई मेडिसिन दें, और अब इस डिनर को तो रहने ही दें। सिकंदर उसे साथ लाते हुए अब तैयबा से कह रहे थे। तैयबा अब सालार को एक तरफ करते हुए उसकी तरफ बढ़ाई। क्या हुआ है मामा को?
कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने मुदाफियाना अंदाज में तैयबा से मिलते हुए कहा।
आप लोग डिनर में जाएं, हमारी परवाह ना करें, हम लोग खा लेंगे जो भी घर में है, सालार ने सिकंदर से कहा। उसे अंदाजा था कि वो इस वक्त कहीं इन्वाइटेड है, यकीनन घर में इस वक्त डिनर की कोई तैयारी नहीं की गई होगी। सिकंदर ने उसकी बात सुनने की जहमत नहीं की। उन्होंने पहले इंटरकॉम पर गार्ड्स को सिक्योरिटी के हवाले से कुछ हिदायत की, उसके बाद ड्राइवर को किसी करीबी रेस्टोरेंट से खाने की कुछ डिशेज लिखवाई और खानसामा को चाय के लिए बुलवाया। प्लीज पापा, आप हमारी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल ना करें, आप जाएं, सालार ने सिकंदर उस्मान से कहा, ताकि तुम पीछे से हमारे लिए कोई और मुसीबत खड़ी कर दो। वो सिकंदर के जुमले पर हंस पड़ा। उसकी हंसी ने सिकंदर को कुछ और बरहम किया। इमामा अगर उसके पास ना बैठी होती तो सिकंदर उस्मान इस वक्त उसकी तबीयत अच्छी तरह साफ कर देते। जब मैंने तुम दोनों से कहा था कि फिलहाल यहां मत आना तो फिर? इमामा, कम अज कम तुम्हें इसे समझाना चाहिए था, सिकंदर ने इस बार इमामा से कहा था, जो पहले ही बेहद शर्मिंदगी और हवास बाख्तगी का शिकार हो रही थी। पापा, इमामा तो मुझे मना कर रही थी, मैं जबरदस्ती लाया हूं इसे, इमामा की किसी वजाहत से पहले ही सालार ने कहा। सिकंदर ने बेहद खुशमगी नजरों से उसे देखा। उनकी औलाद में से किसी ने आज तक उनके मुंह पर बैठकर इतने फखरी अंदाज में उनकी बात ना मानने का ऐलान नहीं किया था। सालार से मजीद कुछ कहने के बजाय उन्होंने मुलाजिम से सामान उनके कमरे में रखने के लिए कहा। इस सारे मामले पर सालार से संजीदगी से बात करना जरूरी था, लेकिन अकेले में। सालार के कमरे में आते ही इमामा मकनतीस की तरह खिड़की की तरफ गई थी और फिर जैसे सहर जदा सी खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई। वहां से उसके घर का बाया हिस्सा नजर आ रहा था। उसके घर का ऊपर वाला हिस्सा, उसके कमरे की खिड़कियां, वसीम के कमरे की खिड़कियां, दोनों कमरों में रोशनी थी, लेकिन दोनों खिड़कियों के पर्दे गिरे हुए थे। कोई इन पर्दों को हटाकर उस वक्त इसकी तरह आकर खिड़की के सामने खड़ा हो जाता तो उसे आराम से देख लेता, पता नहीं पहचानता भी या नहीं। वो इतनी तो नहीं बदली थी कि कोई उसे पहचान ही ना पाता। उसके अपने खूनी रिश्ते तो पानी सैलाब के रेले की तरह सब बंद तोड़कर उसकी आंखों से बहने लगा था। ये कब सोचा था उसने कि कभी अपनी जिंदगी में वो दोबारा इस घर को देख सकेगी? क्या जरूरी था कि ये सब कुछ उसकी जिंदगी में उसके साथ होता? वो तकरीबन 2 बजे कमरे में आया और उसका ख्याल था कि इमामा सो चुकी होगी, मगर वो अभी भी खिड़की के सामने बैठी हुई बाहर देख रही थी। उसके घर की लाइट्स अब ऑफ थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने गर्दन मोड़कर सालार को देखा था। सो जाना चाहिए था तुम्हें इमामा, उससे नजरें मिलने पर सालार ने कहा। वो खिड़कियों के आगे एक कुर्सी रखे, दोनों पांव ऊपर किए, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी थी। सो जाऊंगी, वहां सब सो चुके हैं, देखो लाइट्स ऑफ हैं सब बेडरूम्स की। वो दोबारा गर्दन मोड़कर बाहर देखने लगी। सालार चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर वॉशरूम में चला गया। 10 मिनट बाद कपड़े तब्दील करके वो सोने के लिए बेड पर लेट गया। इमामा, अब बस करो, इस तरह देखने से क्या होगा, बेड पर लेटे लेटे उसने इमामा से कहा। मैंने कब कहा कि कुछ होगा, तुम सो जाओ, तुम वहां बैठी रहोगी तो मुझे भी नींद नहीं आएगी, लेकिन मैं यहीं बैठूंगी, उसने जिद्दी अंदाज में कहा। सालार को उसकी जिद ने कुछ हैरान किया। चंद लम्हे उसे देखने के बाद उसने फिर कहा, इमामा, तुम अगर बेड पर आकर लेटोगी तो यहां से भी तुम्हारा घर नजर आता है। सालार ने एक बार फिर कोशिश की थी, यहां से ज्यादा करीब है, वो इस बार बोल नहीं सका। उसके लहजे में मौजूद किसी चीज ने उसके दिल पर असर किया था। चंद गज का फासला उसके लिए बेमैनी था, वो उसका घर नहीं था। चंद गज की नजदीकी उसके लिए बहुत थी, वो 9 साल बाद उस घर को देख रही थी। हमारे घर के ऊपर वाले फ्लोर में एक कमरा है, उस कमरे की खिड़कियों से तुम्हारे घर का लॉन और पोच तक नजर आता है, वो लेटे लेटे छत को देखते हुए बड़बड़ाया। इमामा यकदम कुर्सी से उठकर उसके पास आ गई। कौन सा कमरा, मुझे दिखाओ, उसके बेड के करीब खड़े होकर उसने बेचैनी से पूछा। दिखा सकता हूं अगर तुम सो जाओ, फिर सुबह मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा,
सालार ने आंखें खोलकर कहा, मैं खुद भी जा सकती हूं। वो बेहद खफगी से सीधी हो गई। ऊपर वाला फ्लोर लॉक्ड है। इमामा जाते जाते रुक गई। वो यकदम मायूस हुई थी। सालार, मुझे लेकर जाओ ऊपर। वो फिर उसका कंधा हिलाने लगी। इस वक्त तो नहीं लेकर जाऊंगा, उसने दो टोक अंदाज में कहा। तुम्हें जरा सी भी मोहब्बत नहीं है मुझसे? वो उसे जज्बाती दबाव में ले रही थी। है, इसीलिए तो नहीं लेकर जा रहा। सुबह वहां जाना, तुम्हारी फैमिली के लोग घर से निकलेंगे, तुम उन्हें देख सकती हो। इस वक्त क्या नजर आएगा तुम्हें? सालार ने बेहद संजीदगी से कहा। वैसे भी मुझे नहीं पता कि कमरे की चाबियां किसके पास हैं। सुबह मुलाजिम से पूछ लूंगा, सालार ने झूठ बोला। ऊपर का फ्लोर मुकफ्फल नहीं था, लेकिन इमामा को रोकने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो कुछ मायूस होकर दोबारा खिड़की की तरफ जाने लगी। सालार ने उसका हाथ पकड़ लिया। और फ्लोर में तब अनलॉक कराऊंगा अगर तुम अभी सो जाओ। वो चंद लम्हे उसका चेहरा देखती रही, फिर उसने जैसे हथियार डालते हुए कहा, मैं बेड की इस तरफ सोऊंगी। सालार ने एक लफ्ज कहे बगैर अपनी जगह छोड़ दी। उसने कंबल हटाकर उसके लिए जगह बना दी थी। दोबारा उसकी आंख सालार के जगाने से खुली। सहरी खत्म होने में अभी कुछ वक्त था। जब तक वो कपड़े तब्दील करके और मुंह हाथ धोकर आई, तब तक खानसामा खाने की ट्रॉली कमरे में छोड़ गया था। उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ खाना खाया और खाना खत्म करते ही इमामा ने कहा, अब चाबियां ले लो, ऊपर चलें, मुझे नमाज पढ़कर आने दो। नहीं, मुझे अपना घर देखना है। इस बार सालार ने जैसे इमामा की जिद के सामने हथियार डाले थे, उसे लेकर वो ऊपर के फ्लोर पर आ गया। उस कमरे की खिड़की के सामने खड़े होते ही वो जैसे सांस लेना भूल गई थी। वहां से उसके घर का पूरा लॉन और पोर्च नजर आ रहा था। लॉन बिल्कुल बदल गया था। वो वैसा नहीं रहा था जैसा कभी होता था जब वो वहां थी। तब वहां वो कुर्सियां भी नहीं थी जो पहले होती थी। लॉन में लगी बेलें अब पहले से भी ज्यादा बड़ी और फैल चुकी थी। आंसुओं का एक नया रेला उसकी आंखों में आया था। सालार ने इस दफा उसे कुछ नहीं कहा। कहना बेकार था, उसे फिलहाल रोना था। वो जानता था। वो गांव जाने के लिए तैयार होने के बाद उसे खुदा हाफिज कहने ऊपर आया था। अढ़ाई घंटे के बाद भी वो खिड़की के सामने उसी तरह खड़ी थी। सालार के अंदर आने पर भी उसने पलट कर नहीं देखा था। मैं गांव के लिए निकल रहा हूं, शाम तक वापस आऊंगा। 10-11 बजे के करीब पापा और मम्मी उठ जाएंगे, तब तुम नीचे आ जाना। वो अब भी उसी तरह दुपट्टे से आंखें और नाक रगड़ रही थी, लेकिन उसकी नजरें अब भी खिड़की से बाहर थी। सालार और ये कमरा जैसे उसके लिए अहम नहीं रहा था। वो इससे क्या कह रहा था उसने नहीं सुना था, और सालार ये जानता था। वो उसे खुदा हाफिज कहते हुए चला गया। वो अगले 4 घंटे उसी तरह सोफे पर जमी बैठी रही। उस दिन उसने 9 साल बाद बारी बारी अपने तीनों भाइयों को भी घर से जाते देखा था। वो वहां बैठी उन्हें देखती हिचकियों से रोती रही थी। वहां बैठे हुए उसे लग रहा था कि उसने यहां आकर गलती की है, उसे नहीं आना चाहिए था। इतने साल से सब्र का जो बंद वो बांधती चली आ रही थी, अब वो बंद बांधना मुश्किल हो रहे थे। वो पहले इस्लामाबाद आना नहीं चाहती थी और अब यहां से जाना नहीं चाहती थी। 4:30 बजे उसे मुलाजिम ने इंटरकॉम पर उठाया था। इफ्तार का वक्त करीब था। सिकंदर और तैयबा भी उसका इंतजार कर रहे थे। सालार भी इफ्तार से चंद मिनट पहले ही पहुंचा था। सिकंदर और तैयबा कहीं इन्वाइटेड थे और उन दोनों की फ्लाइट के वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उस डिनर के लिए निकलने से पहले वो सालार और इमामा से मिलकर गए थे। उनकी फ्लाइट 11 बजे थी और जब वो दोनों बाहर आए तो बाहर पोर्च में ड्राइवर एक गार्ड के साथ गाड़ी में इंतजार कर रहा था। सालार ने सामान गाड़ी में रखने के बाद चाबी ड्राइवर से ले ली। इमामा ने हैरानी से उसे देखा था। हम लोग बाई रोड जा रहे हैं, पापा आए तो तुम उन्हें बता देना। ड्राइवर ने कुछ एहतजाज करने की कोशिश की, शायद सिकंदर उसे जरूरत से ज्यादा हिदायत कर गए थे, लेकिन सालार की एक झाड़ ने उसे खामोश कर दिया। और अब इतनी वफादारी दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर से निकलते ही पापा को फोन कर दो, वो गाड़ी में बैठता हुआ उससे कह रहा था। उसे यकीन था वो उसके घर से निकलते ही यही काम करेगा, इसलिए गेट से निकलते ही उसने सिकंदर के फोन पर कॉल की थी। वो कुछ देर के लिए सिकंदर का फोन एंगेज करना चाहता था। पापा, हम लोग निकल रहे थे तो सोचा आपसे बात कर लूं, सालार ने सिकंदर से कहा। अच्छा किया, जरा मम्मी से बात करा दें। उसने सिकंदर के कुछ कहने से पहले ही सिकंदर से कहा। उसे खदशा था कि सिकंदर ड्राइवर की इनकमिंग कॉल को देखकर चौंकेंगे। वो अगर गाड़ी में उनसे बात कर रहा है तो ड्राइवर उन्हें क्यों कॉल कर रहा था। अलबत्ता तैयबा इससे बात करते हुए किसी इनकमिंग कॉल को चेक ना करती, और अगर करती भी तो उनको शक नहीं होता। अगले 15 मिनट वो तैयबा के साथ बातें करता रहा। साथ बैठी हुई इमामा कुछ हैरान थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया था। वो इतनी लंबी बातें करने का आदी नहीं था जितना वो अब यकदम बातूनी हो गया था। इधर यही हैरानी तैयबा को भी हो रही थी। सिकंदर डिनर टेबल पर चंद दूसरे अफराद के साथ मसरूफ थे। 15 मिनट लंबी गुफ्तगू के बाद जब सालार को यकीन हो गया कि ड्राइवर अब तक सिकंदर को कई कॉल्स करने के बाद तंग आकर कॉल्स करना छोड़ चुका होगा, या कम से कम दोबारा करने की अगली कोशिश कुछ देर बाद ही करेगा, तो उसने खुदा हाफिज कहते हुए फोन ऑफ कर दिया। तैयबा और सिकंदर की वापसी 12 बजे से पहले मुतवक्के नहीं थी, और अब अगर ड्राइवर से 5-10 मिनट बाद भी उनकी बात होती तो वो बहुत फासला तय कर चुके होते। बाई रोड आने की क्या जरूरत थी? उसका फोन बंद होते देखकर इमामा ने उससे पूछा। यूं ही दिल चाह रहा था कुछ यादें ताजा करना चाहता हूं, सालार ने सेल फोन रखते हुए कहा। कैसी यादें? वो हैरान हुई। तुम्हारे साथ पहले सफर की यादें। वो कुछ देर उससे नजरें नहीं हटा सकी। वो उस शख्स से क्या कहती कि वो उस सफर को याद नहीं करना चाहती? वो उसके लिए सफर नहीं था, खौफ और बेयकीनी में चंद घंटे थे जो उसने गुजारे थे। मुस्तकबिल उस वक्त एक भयानक भूत बनकर उसके सामने खड़ा था, और उस रास्ते में वो भूत मुसलसल उसे डराता रहा था। मेरे लिए खुशगवार नहीं था वो सफर, उसने थके से लहजे में सालार से कहा। मेरे लिए भी नहीं था, सालार ने भी उसी अंदाज में कहा। कई साल हांट करता रहा मुझे, देखने आया हूं कि अब भी हांट करता है। वो बात खत्म करते हुए उसे देखकर बहुत मध्यम अंदाज में मुस्कुराया। इमामा खामोश रही। कई साल पहले की वो रात एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने आने लगी थी, और आंखों के सामने सिर्फ रात ही नहीं बल्कि जलाल भी आया था। उस रात की तकलीफ का एक सिरा उसकी जात के साथ बंधा था, दूसरा उसकी फैमिली के साथ। उसने दोनों को खोया था। अगली सुबह का सूरज लाख हमेशा जैसा होता, उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही थी। कभी वो सोच सकती थी कि वो कभी उस रात को सिर्फ तकलीफ समझकर सोचेगी, तकदीर समझकर नहीं। उसकी आंखें भीगने लगी थी। बराबर में बैठा शख्स आज उसके आंसुओं से बेखबर नहीं था, लेकिन उस वक्त बेखबर था। उसने कुछ कहे बगैर हाथ बढ़ाकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इमामा आंखें पोंछने लगी थी। वो सारा नक्शा जो उसने अपनी जिंदगी का खींचा था, उसमें ये शख्स कहीं नहीं था। जिंदगी ने किसको किसके साथ जोड़ा, किस ताल्लुक को कहां से तोड़ा था, पता ही नहीं चला। सफर खामोशी से हो रहा था, लेकिन तय हो रहा था। अब बहुत एहतियात से गाड़ी चला रहे हो, इमामा को कई साल पहले की उसकी रैश ड्राइविंग याद थी। जिंदगी की कदर हो गई है अब, उसने सालार से हाथ छुड़ाते हुए पूछा। तुम्हारी वजह से एहतियात कर रहा हूं, वो बोल नहीं सकी। खामोशी का एक और वक्फा आया। वो शहर की हदूद से बाहर निकल आए थे, और सड़क पर धुंध महसूस होने लगी थी। यहां धुंध गहरी नहीं थी, लेकिन मौजूद थी। कभी दोबारा सफर किया अकेले इस रोड पर? इमामा ने कुछ देर बाद पूछा। मोटरवे से जाता हूं अब, अगर गाड़ी में जाना हो तो। बस एक बार आया था कुछ माह पहले, वो कह रहा था। जब पापा ने मुझे तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ नोट दिया, क्या रात थी। वो जैसे तकलीफ से कर रहा और फिर हंस पड़ा। उम्मीद थी जिसको, उस रात मैंने मुजस्सम फना होते देखा। समझ में आया मुझे कि तब उस रात तुम किस हालत से गुजरी होगी। अजियत से बहुत ज्यादा, मौत से जरा सी कम, लेकिन तकलीफ उसको कोई नहीं कह सकता। विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए वो जो कुछ उस तक पहुंचाना चाह रहा था पहुंच रहा था। उस कांच से वो भी गुजरी थी, नम होती आंखों के साथ, गर्दन सीट की पुश्त से टिकाए वो उसे देख रही थी। मैं सारा रास्ता बस यही सोचता रहा कि मैं अब करूंगा क्या, क्या करूंगा मैं जिंदगी में। सोच रहा था अल्लाह ने मुझे जरूरत से ज्यादा जिंदगी दे दी है। तुम्हारे साथ बुरा किया था, बुरा तो होना ही था मेरे साथ, याद है ना मैंने तुम्हारे साथ सफर में कैसी बातें की थी। उसने अजीब से अंदाज में हंसकर एक लम्हे के लिए गर्दन मोड़कर उसे देखा। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिली थी, फिर सालार ने नजरें चुराते हुए गर्दन सीधी कर ली। सफर फिर खामोशी से तय होने लगा था। वो ताल्लुक जो उनके बीच था वो जैसे खामोशी को भी गुफ्तगु बना रहा था। लफ्ज उस वक्त खामोशी से ज्यादा बामानी नहीं हो सकते थे। इमामा भी गर्दन सीधी करके सड़क को देखने लगी। धुंध अब गहरी हो रही थी, जैसे वो सड़क पर नहीं बल्कि अपने माजी की धुंध में दाखिल हो रहे थे। गहरी, मादूम ना होने और हाथ को हाथ सुझाई ना देने वाली गहरी धुंध। क्या क्या अपने अंदर छुपाई हुई थी, लेकिन जो कुछ था वो ओझल हो गया था, परामोश नहीं हुआ था। सेलफोन की रिंगटोन ने उन दोनों को चौंका दिया। सेल पर सिकंदर का नंबर चमक रहा था। सलार हंस पड़ा। इमामा इस बेमकसद हंसी को नहीं समझी। हेलो, सलार ने कॉल रिसीव करते हुए सिर्फ इतना ही कहा था। उसे हैरत थी, सिकंदर उस्मान की कॉल इतनी देर से नहीं आनी चाहिए थी। शायद ड्राइवर ने उनके घर पहुंचने पर ही उन्हें सालार के एडवेंचर के बारे में मुतला किया था। सालार ने आवाज कुछ कम कर दी थी। जो कुछ सिकंदर उसे फोन पर कह रहे थे वो नहीं चाहता था कि वो इमामा तक पहुंचता। जी जी, वो अब ताबेदारी से कह रहा था। सिकंदर उस पर बुरी तरह बरस रहे थे, और क्यों ना बरसते वो। उन्हें बेवकूफ बनाना जैसे सालार के लिए बाएं हाथ का खेल था, और यह एहसास सिकंदर के गुस्से में इजाफा कर रहा था। उन्होंने कुछ देर पहले तैयबा के पर्स में पड़े अपने सेल पर ड्राइवर की मिस्ड कॉल्स देखी थी, और उससे बात करके वो खून के घूंट पी कर रह गए थे। बाई रोड लाहौर जाना उस वक्त उनके लिए इसकी हिमाकत का आला तरीन मुजाहरा था, लेकिन उसने जितने इत्मीनान से उनकी आंखों में धूल झोंकी थी वो उनके लिए ज्यादा इश्तियाल अंगेज था। अब गुस्सा खत्म कर दें पापा, हम दोनों बिल्कुल महफूज हैं और आराम से सफर कर रहे हैं, उसने बिलाखिर सिकंदर से कहा। तुम जफर को धमकियां देकर गए थे कि वो मुझे इन्फॉर्म ना करे? धमकी? मैंने एक मुद्देबाना दरखास्त की थी उससे कि वो आपको फिलहाल इन्फॉर्म ना करे। आप डिनर छोड़कर खामखा परेशान होते, वो बड़ी रसानियत से उनसे कह रहा था। मेरी दुआ है सालार कि तुम्हारी औलाद बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो और तुम्हें इतना ही ख्वार करे जितना तुम हमें करते हो, फिर तुम्हें माँ बाप की परेशानी का एहसास होगा। वो हंस पड़ा। पापा, इस तरह की बातें करेंगे तो मैं औलाद ही पैदा नहीं करूंगा। इमामा ने इसके जुमले पर चौंक कर उसे देखा। पापा दुआ कर रहे हैं कि हमारी औलाद जल्द पैदा हो। इमामा को चौंकते देखकर सलार ने फोन पर बात करते हुए उसे बताया। वो बेख्तियार सुर्ख हुई, लेकिन उसको समझ नहीं आया कि ये इस तरह की दुआ का कौन सा वक्त और तरीका है। दूसरी तरफ सिकंदर फोन पर उसका जुमला सुनकर कुछ बेबसी से हंस पड़े थे। उनका गुस्सा कम होने लगा था। कई सालों के बाद उन्हें सालार से इस तरह बात करना पड़ी थी। वो अब उससे पूछ रहे थे कि वो कहाँ है। सिकंदर को अपने हदूद अरबा के बारे में बताकर सालार ने फोन बंद कर दिया। पापा नाराज हो रहे थे? इमामा ने संजीदगी से पूछा। खुश होने वाली तो कोई बात नहीं है, उसने जवाबन कहा। तुम झूठ क्यों बोलते हो? इमामा ने जैसे उसे शर्म दिलाने की कोशिश की थी। क्योंकि अगर मैं सच बोलूं तो लोग मुझे वो नहीं करने देते जो मैं करना चाहता हूं। कमाल की मंतक थी और बेहद संजीदगी से पेश की गई थी। चाहे तुम्हारे झूठ से किसी को दुख पहुंचे? मेरे झूठ से किसी को दुख नहीं पहुंचता, बल्कि गुस्सा आता है। उसे समझाना बेकार था, वो सालार था। वो अब अंदाजा लगा सकती थी कि सिकंदर ने उसे फोन पर क्या कहा होगा। रात के तकरीबन पिछले पहर वो सर्विस स्टेशन पर पहुंचे थे। ये जगह याद है तुम्हें? सालार ने गाड़ी रोकते हुए उससे पूछा। इमामा ने धुंधजदा उस जगह को देखा जहां कुछ लाइट्स धुंध और अंधेरे का मुकाबला करने में मसरूफ थी। नहीं, उसने सालार से कहा, ये वो जगह है जहां तुमने रुककर नमाज पढ़ी थी। वो दरवाजा खोलते हुए नीचे उतर आया। इमामा ने कदरे हैरान नजरों से उस जगह को दोबारा देखना शुरू किया। अब वो उसे किसी हद तक शनाख्त कर पा रही थी। वो भी दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई। एक कपकपी उसके जिस्म में दौड़ी। वो आज भी एक स्वेटर और चादर में मलबूस थी। वो कमरा बदल चुका था जहां उन्होंने बैठकर कभी चाय पी थी, चाय और चिकन बर्गर। सलार ने कुर्सी पर बैठे हुए उस आदमी से कहा जो जमाइयां लेते हुए उन्हें अंदर लेकर आया था और अब ऑर्डर के इंतजार में खड़ा था। इमामा उसके ऑर्डर पर उसे देखकर मुस्कुराई। अब खा लोगे? वो जानता था उसका इशारा किस तरफ था। वो कुछ कहे बगैर मुस्कुरा दिया। लास्ट टाइम हम वहां बैठे थे तुमने वहां नमाज पढ़ी थी। वो हाथ के इशारे से उस कमरे की मुख्तलिफ अतराफ इशारा करते हुए कह रहा था। इमामा को याद नहीं था, कमरे में जगह जगह टेबल्स और कुर्सियां लगी हुई थीं। फजर की अजान में अभी बहुत वक्त था और फिलहाल इस जगह पर काम करने वाले चंद आदमियों के अलावा और कोई नहीं था। अब उस जगह पर चाय और बर्गर इतने बुरे नहीं थे जितने ये उस वक्त थे। प्रेजेंटेशन भी बहुत बेहतर थी, लेकिन उन दोनों में से कोई ना जायके को देख रहा था और ना प्रेजेंटेशन को। दोनों अपने अपने माजी को जिंदा कर रहे थे। ये चंद घूंट और चंद दुकमों की बात नहीं थी, जिंदगी की बात थी, जो न जाने रेल की पटरियों की तरह कहां कहां से गुजर कर एक स्टेशन पर ले आई थी। वो उस मकाम पर खड़े थे जहां उन पटरियों का कांटा बदला था। दूर करीब एक दूसरे में मदगम और अब एक दूसरे के साथ। इस रास्ते पर कुछ नई यादें बनी थी, उनकी शादी के बाद सड़क के रास्ते उनका पहला सफर, और इन नई यादों ने पुरानी यादों को धुंधलाने के अमल का आगाज कर दिया था। टेबल पर बिल के पैसे रखने के बाद वो उठ खड़ा हुआ। इमामा ने भी उसकी पैरवी की। सलार ने चलते हुए उसका हाथ अपने दाएं हाथ में पकड़ लिया। इमामा ने उसका चेहरा देखा, उसके चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कुराहट आई थी। इमामा, वो पिस्टल कहाँ है? वो इमारत से बाहर आते हुए उसके सवाल पर चौंकी। उसे क्या याद आया था, वो हंस पड़ी। अब्बू के पास है, उसने सलार से कहा। तुम वाकई चला सकती थी? सलार ने पता नहीं क्या यकीन दहानी चाही। हां, इमामा ने सर हिलाया, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी। वो उसके अगले जुमले पर बेख्तियार ठटका। मेरे पास बस पिस्टल ही था, वो इत्मीनान से कह रही थी। उसने बेख्तियार सांस लिया। उसकी आंखों में धूल उसने झोंकी थी या अल्लाह ने, वो अंदाजा नहीं कर सका। उस पिस्टल ने उसे जितना शौक और गुस्सा दिलाया था, अगर उसे अंदाजा हो जाता कि वो बुलेट्स के बगैर था, तो सालार उस दिन इमामा को पुलिस के हाथों जरूर अरेस्ट करवा कर आता। वो पिस्टल हाथ में लिए क्यों इतनी पुरेतमाद नजर आई थी उसे, ये उसे अब समझ में आया था। तुम डर गए थे? इमामा हंस रही थी। नहीं, डरा तो नहीं था, मगर शौक रह गया था। तुम सारा रास्ता रोती रही थी। मैं तवक्को भी नहीं कर सकता था कि तुम मुझ पर पिस्टल निकाल लोगी। तुम्हारे आंसुओं ने धोखा दिया मुझे, वो अब कुछ खफगी से कह रहा था। इमामा खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो अगले 2-3 दिन तक इस्लामाबाद की ट्रांस में ही रही। वो वहां जाने से जितनी खौफजदा थी, अब वो खौफ यकदम कुछ खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था, और उसका हतमी नतीजा ये निकला था कि वो अब इस्लामाबाद के अगले दौरे की मुंतजिर थी। उस गेस्ट रूम की खिड़की में खड़े सारा दिन किसको किस वक्त देखा था, वो अगले 2-3 दिन सलार को भी बताती रही, और तीसरे दिन उसकी तान एक जुमले पर आकर टूटी थी। सलार, हम इस्लामाबाद में नहीं रह सकते। सलार बेड पर बैठा लैपटॉप गोद में रखे कुछ ईमेल्स करने में मसरूफ था, जब इमामा ने इससे पूछा। वो पिछले आधे घंटे से उससे सिर्फ इस्लामाबाद की ही बातें कर रही थी, और सलार बेहद तहम्मुल से उसकी बातें सुन रहा था और उसका जवाब भी दे रहा था। नहीं, अपने काम में मसरूफ, सलार ने कहा। क्यों? क्योंकि मेरी जॉब यहां है। तुम जॉब बदल लो। नहीं बदल सकता, वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर उसने कहा, मैं इस्लामाबाद में नहीं रह सकती। इस बार सालार ने बिलाखिर स्क्रीन से नजर हटाकर उसे देखा। इस बात का क्या मतलब है, उसने बेहद संजीदगी से उससे पूछा। मेरा मतलब है कि मैं वहां रह लूंगी, तुम वीकेंड पर आ जाया करना। एक लम्हे के लिए सालार को लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन वो मजाक नहीं था। मैं हर वीकेंड पर इस्लामाबाद नहीं जा सकता, उसने बेहद तहम्मुल से उसे बताया। वो कुछ देर खामोश रही। सलार दोबारा लैपटॉप की तरफ मुतवज्जे हो गया। तो तुम महीने में एक दफा आ जाया करो, वो उसके जुमले से ज्यादा उसके इत्मीनान पर ठटका था। बाज दफा मैं महीने में एक बार भी नहीं आ सकता, उसने कहा। तो कोई बात नहीं, यानी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, वो ईमेल्स करना भूल गया था। मैंने ये तो नहीं कहा, इमामा ने बेसाख्ता कहा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो उसके एहसासात को इतनी सफाई से काम देगा। पापा और मम्मी अकेले होते हैं वहां, उस सालार ने उसकी बात काटी। वो वहां अकेले नहीं होते, अमार और युसरा होते हैं उनके पास। वो दोनों आजकल पाकिस्तान से बाहर हैं। दूसरी बात ये कि पापा और मम्मी बड़ी सोशल लाइफ गुजार रहे हैं, उनको तुम्हारी सर्विसेज की इतनी जरूरत नहीं है जितनी मुझे है, सालार ने बेहद संजीदगी से उससे कहा। वो कुछ देर खामोश उसकी गोद में पड़े लैपटॉप की स्क्रीन को घूरती रही, फिर बड़बड़ाई, मैं इस्लामाबाद में खुश रहूंगी। यानी मेरे साथ खुश नहीं हो? वो जज्बस हुआ। वहां ज्यादा खुश रहूंगी, वो अब बिलाखिर साफ साफ अपनी तरजीहात बता रही थी। पापा ठीक कहते थे मुझे, तुम्हें इस्लामाबाद नहीं लेकर जाना चाहिए था, मां बाप की बात सुननी चाहिए। वो बेख्तियार पछताया। देखो, अगर मैं तुम्हें इस्लामाबाद भेज देता हूं तो कितनी देर रह सकती हो तुम वहां? हमें अगले साल पाकिस्तान से चले जाना है, वो उसे प्यार से समझाने की एक और कोशिश कर रहा था। तो कोई बात नहीं, तुम पाकिस्तान तो आया करोगे ना? सालार का दिल खून हुआ। जिंदगी में आज तक किसी ने उसकी जात में इतनी अदम दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। खबरदार, आइंदा मेरे सामने तुमने इस्लामाबाद का नाम भी लिया, और अपने अहमकाना मशवरे अपने पास रखो। अब मेरा दिमाग चाटना बंद करो और सो जाओ। वो बुरी तरह बिगड़ा था। अपना लैपटॉप उठाकर वो बेहद खफगी के आलम में बेडरूम से निकल गया था। इमामा की समझ में नहीं आया कि इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है। उस वक्त उसे वाकई अंदाजा नहीं हो रहा था कि अपने मां बाप की मोहब्बत में वो कितने अहमकाना अंदाज में सोचने लगी थी। लाइट्स ऑफ करके उसने कुछ देर के लिए सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार अब सालार का ख्याल आ रहा था। चंद लम्हे लेटे रहने के बाद वो यकदम उठकर कमरे से निकल आई। वो लाउंज का हीटर ऑन किए करीब पड़े सोफे पर बैठा काम कर रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज पर ठटका था। अब क्या है? इमामा को देखते ही उसने बेहद खफगी से कहा। कुछ नहीं, मैं तुम्हें देखने आई थी। वो उसके सख्ती से पूछने पर कुछ जज्बस हुई। कॉफी बना दूं तुम्हें? वो मसालेहाना अंदाज में बोली। मुझे जरूरत होगी तो मैं खुद बना लूंगा, वो उसी अंदाज में बोला। वो उसके करीब सोफे पर आकर बैठ गई। कुछ कहे बगैर उसने सालार के बाजू पर हाथ रखते हुए उसके कंधे पर सर टिका दिया। ये नदामत का इजहार था। सालार ने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए वो लैपटॉप पर अपना काम करता रहा, लेकिन यह बड़ा मुश्किल था। वो उसके कंधे पर सर टिकाए उसके इतने करीब बैठी हो और वो उसे नजरअंदाज कर दे। कर देता अगर सिर्फ उसकी बीवी होती। ये इमामा थी। लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलती उसकी उंगलियां थमने लगी। फिर एक गहरा सांस लेकर वो बड़बड़ाया, अब इस तरह बैठोगी तो मैं काम कैसे करूंगा? तुम मुझे जाने का कह रहे हो? इमामा ने बुरा माना। मैं तुम्हें जाने का कह सकता हूं? उसने उसका सर चूमा। बहुत अहमकाना बात कही थी तुमने मुझे। ऐसे ही कहा था, मुझे क्या पता था तुम इतनी बदतमीजी करोगे मेरे साथ। वो हक्का बक्का रह गया। बदतमीजी? क्या बदतमीजी की है मैंने? तुम्हें एक्सक्यूज करना चाहिए जो कुछ तुमने मुझसे कहा। वो समझा वो नदामत का इजहार करने आई है, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा था। इमामा ने बेहद खफगी से उसके कंधे से अपना सर ऊपर उठाते हुए उससे कहा, अब मैं एक्सक्यूज क्या करूं तुमसे? सालार ने उसकी उठी हुई ठोड़ी देखी। क्या मान था, क्या गरूर था, जैसे वो इससे ये तो करवा ही नहीं सकता था। एक्सक्यूज करूं तुमसे? खफा सी आंखों और उठी ठोड़ी के साथ वो फिर पूछ रही थी। सालार ने नफी में सर हिलाते हुए झुककर उसकी ठोड़ी को चूमा। ये मान उसे ही रखना था। वो उसका सर झुका देखने का ख्वाहिशमंद नहीं था। नहीं, तुमसे एक्सक्यूज करवाकर क्या करूंगा मैं? वो बेहद नरमी से उसकी ठोड़ी को दोबारा चूमते हुए बोला। इमामा के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई। क्या गुरूर था जो उसकी आंखों में झलका था। हां, वो कैसे उससे ये कह सकता था। उससे अलग होते हुए उसने सालार से कहा, अच्छा अब तुम एक्सक्यूज करो मुझसे, क्योंकि तुमने बदतमीजी की है। वो अब इत्मीनान से मुतालबा कर रही थी। वो मुस्कुरा दिया। वो मोतरिफ से एतराफ चाहती थी। आई एम सॉरी, सालार ने उसका चेहरा देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, अब आइंदा तुम ये ना कहना कि मैं इस्लामाबाद की बात ना करूं। वो बेहद फैजाना अंदाज में उसकी माजरत कबूल करते हुए बोली। सालार के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैली। तो सारा मसला इस्लामाबाद का था। उसे शायद ये खदशा हो गया था कि वो दोबारा उसे वहां नहीं लेकर जाएगा, और वो इसी खदशे के तहत उसके पास आई थी। क्या अंदाजे दिलबरी था। वहां उसके लिए कुछ नहीं था, जो भी था किसी के तुफैल था। वो हंस पड़ा। क्या हुआ, उसने उलझकर सालार को देखा। कुछ नहीं, सालार ने जरा सा आगे झुकते हुए बड़ी नरमी और मोहब्बत से उसे इस तरह गले लगाकर उसका सर और माथा चूमा, जिस तरह वो रोज ऑफिस से आने के बाद दरवाजे पर उसे देखकर करता था। गुड नाइट, वो अब उसे खुदा हाफिज कह रहा था। गुड नाइट, वो अपने शॉल लपेटते हुए सोफे से उठ खड़ी हुई। बेडरूम का दरवाजा खोलते हुए उसने गर्दन मोड़कर सालार को देखा। वो उसे ही देख रहा था। वो अलविदाया अंदाज में मुस्कुरा दी। वो भी जवाबन मुस्कुराया था। इमामा ने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। वो बहुत देर तक उस बंद दरवाजे को देखता रहा। ये औरत जिस मर्द की जिंदगी में भी होती, वो खुशकिस्मत होता, लेकिन वो खुशकिस्मत नहीं था। खुशकिस्मती की जरूरत कहां रह गई थी उसे। हबीब साहब की बीवी ने कई चक्कर लगाए मेरे घर के। हर बार कुछ ना कुछ लेकर आती थी आमना के लिए। कहती थी हमें जहेज नहीं चाहिए, बस आमना का रिश्ता दे दें। कहती क्या थी, बल्कि मिन्नतें करती थी। इमामा के दफ्तर अपने बेटे को भी ले गई एक दिन। बेटा भी खुद आया मां के साथ हमारे घर। बचपन से पला बड़ा था मेरी नजरों के सामने। वो सहन में चारपाई पर बैठा सर झुकाए, सुर्ख ईंटों के फर्श पर नजरें जमाए सईदा अम्मा की गुफ्तगु पिछले आधे घंटे से उसी खामोशी के साथ सुन रहा था। उसकी खामोशी सईदा अम्मा को बुरी तरह तपा रही थी। कमबख्त ना हूं ना हां, कुछ बोलता ही नहीं। मजाल है एक बार ही कह दे कि आपने अपनी बच्ची की शादी मेरे साथ करके मेरी बड़ी इज्जत अफजाई की, या यही कह दे कि बहुत गुनों वाली है आपकी बच्ची। वो बातों के दौरान मुसलसल खोल रही थी। इतवार का दिन था और वो इमामा के साथ सुबह बाकी का सामान ठिकाने लगाने आया था। वो इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सामान को कुछ चैरिटी इदारों में भिजवाने का इंतजाम करके आया था। इमामा ने इस बार एतराज नहीं किया था, लेकिन सईदा अम्मा को उन दोनों ने ये नहीं बताया था कि वो सामान उनके घर नहीं, कहीं और भिजवाया जा रहा है। सहपहर हो रही थी और वो इन तमाम कामों से फारिग होकर वहीं धूप में सहन में बिछी एक चारपाई पर बैठ गया था। इमामा अंदर किचन में इफ्तारी और खाने की तैयारी कर रही थी। उन्हें आज इफ्तारी वहीं करनी थी। धूप की वजह से सालार ने अपना स्वेटर उतारकर चारपाई के एक कोने पर रख दिया था। जींस की जेब में रखा एक रुमाल निकालकर उसने चेहरे पर आई हल्की सी नमी को पोंछा। ये इमामा के रिश्ते की चौथी दास्तान थी जो वो सुन रहा था। बेसन को बर्तन में घोलते हुए इमामा ने सहन में खुलने वाली किचन की खिड़की से सालार को देखा। उसे उस पर तरस आया। वो किचन में सईदा अम्मा की सारी गुफ्तगु सुन सकती थी, और वो गुफ्तगु किस हद तक काबिले एतराज हो रही थी वो इसका अंदाजा कर रही थी। तीन दफा उसने मुख्तलिफ बहानों से सईदा अम्मा को आकर टालने की कोशिश की। गुफ्तगु का मौजू बदला, लेकिन जैसे ही वो किचन में आती, बाहर सहन में फिर वही गुफ्तगु शुरू हो जाती। ऊंचा लंबा जवान है, कद तुमसे कुछ आध फुट ज्यादा ही होगा। हबीब साहब के बेटे का हुलिया बयान करते हुए सईदा अम्मा मुबालगे की आखिरी हदों को छू रही थी। सालार का अपना कद 6 फुट 2 इंच के बराबर था, और आध फुट होने का मतलब तकरीबन 7.5 फुट था, जो कम से कम लाहौर में पाया जाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर था। अम्मा, जीरा नहीं मिल रहा मुझे, इमामा ने खिड़की से झांकते हुए सईदा अम्मा को कहा। इसके अलावा अब और कोई भी चारा नहीं था कि वो उन्हें अंदर बुला लेती। अरे बेटा, उधर ही है जिधर हमेशा होता है, जीरे ने कहां जाना है, सईदा अम्मा ने उठते हुए कहा। सहन में चारपाई पर बैठे सालार ने जूते उतार दिए। स्वेटर को सर के नीचे रखते हुए वो चारपाई पर चित लेट गया। अंदर से इमामा और सईदा अम्मा की बातों की आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन सालार ने उन आवाजों से तवज्जो हटा ली। वो सुर्ख ईंटों की दीवार पर चढ़ी सब्ज पत्तों वाली बेलें देख रहा था। धूप अब कुछ ढलने लगी थी, मगर उसमें अब भी तमाजत थी। बराबर के किसी घर की छत से चंद कबूतर उड़कर सहन के ऊपर से गुजरे। उनमें से एक कबूतर कुछ देर के लिए सहन की दीवार पर बैठ गया। एक तवील अरसे के बाद उसने धूप में ऐसा सुकून पाया था। धूप में सुकून नहीं था, जिंदगी में सुकून था। उसने आंखें बंद की, फिर चंद लम्हों के बाद चौंक कर आंखें खोली। वो बड़े गैर महसूस अंदाज में उसके सर के नीचे एक तकिया रखने की कोशिश कर रही थी। उसे आंखें खोलते देखकर उसने कुछ माजरत खाहाना अंदाज में कहा, गर्दन थक जाती है इस तरह तुम्हारी, उसने सालार का स्वेटर निकालते हुए कहा। सालार ने कुछ कहे बगैर तकिया सर के नीचे ले लिया। वो उसका स्वेटर तय करते हुए अपने बाजू पर डालते अंदर चली गई। ऐसी नाजबरदारी का कहां सोचा था उसने, और वो ऐसी नाजबरदारी चाहता भी कहां था उससे। साथ की ख्वाहिश थी, वो मिल गया था, कुछ और मिलता ना मिलता। उसने दोबारा आंखें बंद कर ली। खून कहां से निकल रहा था वो अंदाजा नहीं कर सका, लेकिन उसके हाथों पर खून लगा हुआ था। वो हथेलियों को तकलीफ और खौफ के आलम में देख रहा था। फिर उसने झुककर अपने सफेद लिबास को देखा। उसका लिबास बेदाग था, फिर हाथों पर लगा हुआ खून और जिस्म में होने वाली ये तकलीफ, वो समझ नहीं पा रहा था। उसकी हथेलियों से खून के चंद कतरे उसकी सफेद कमीज के दामन पर गिरे। सालार, असर का वक्त जा रहा है, नमाज पढ़ लो, वो हड़बड़ाकर उठा था। इमामा उसके पास खड़ी उसका कंधा हिलाते हुए उसे जगा रही थी। सालार ने चारों तरफ देखा, फिर अपने दोनों हाथों को। उसकी हथेलियां साफ थीं, उसका सांस बेतरतीब था। इमामा उसका कंधा हिलाकर चली गई थी। सालार उठकर बैठ गया। वो ख्वाब था जो वो देख रहा था। चारपाई पर बैठे उसने ख्वाब को याद करते हुए कुछ आयात की तिलावत शुरू कर दी। वो बहुत अरसे के बाद कोई डरावना ख्वाब देख रहा था। सहन की धूप अब ढल चुकी थी। उसने बेख्तियार अपनी घड़ी पर वक्त देखा। असर की जमात का वक्त निकल चुका था। उसे अब घर में ही नमाज पढ़नी थी। अपनी जुराबें उतारते हुए भी वो ख्वाब के बारे में सोचकर परेशान होता रहा। इमामा तब तक उसका स्वेटर और वजू करने के लिए अंदर से चप्पल ले आई थी। तबीयत ठीक है तुम्हारी, उसे स्वेटर देते हुए इमामा ने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा। उसका चेहरा उसे कुछ सुर्ख लगा था। उसने सालार की पेशानी पर हाथ रखकर उसका टेम्परेचर चेक किया। बुखार नहीं है, धूप में सोने की वजह से लगा होगा, सालार ने स्वेटर पहनते हुए उससे कहा। इमामा को वो किसी गहरी सोच में लगा।